क्यों जलते हैं? मछली को पानी से निकाल दो तो वो क्यों मरती है छटपट छटपट करके एक सेकंड? क्यों नहीं बच सकती? उसको निकाल दो मछली को और कह दे तुम ठीक रहो, यहाँ रहेगी?
रानी
गोपियों का ठीक ऐसे ही है। इसको कहते हैं तन मनुष्य इत्यादि भाव, इसी का यहाँ पर वर्णन किया है। पहले मछली का पानी से प्रेम देखो और वो पतंग जो है अपना प्राण दे देता है उस आग पर न्योछावर कर देता है अपने को। ऐसा प्रेमी व्यक्ति कृष्ण के प्रति अपने को न्योछावर यदि करने वाला हो तो भी ये प्रेम की अढ़ाई अक्षर की परिभाषा या व्याख्या समझ सकता है। इसलिए इतना सहज नहीं है। इसलिए जितने हमारे अंदर में दुर्गुण हैं इन सब को छोड़ दिया जाए। भजन करते 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 देहात्मोभिमान दूर होगा। काम क्रोध लोभ मद मोह मात्सर्य ये स्वार्थ के ही लक्षण हैं, ये सब संपूर्ण रूप से छूट जाएंगे। कृष्ण की का जो प्रेम है, जो गोपियों का गोपियों के संबंध में चिंतन करना, उनका गान करना, उनके विचारों को लेना, लेते लेते तब कहीं जाकर के प्रेम हृदय में आएगा, तब हम इन चीजों को समझ सकते, तब कृष्ण के प्रति निस्वार्थ प्रेम आ सकता, तब हम इन चीजों को कुछ समझ सकते हैं। आज 7 से भी अधिक हो गया, तब आज एकादशी है, इधर में कीर्तन कर रहे थे इसलिए आप लोगों का समय इधर में थोड़ा सा ले लिया। अब आज यहीं कहे और कल इसके बाद में हम व्याख्या पंचाकल पत्र आप लोग को पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो महावदन्याय कृष्णाय नाम्ने गौरवरक्षिते हे कृष्णकरुणासिन्धो दीनबन्धो भक्तपते गोपेशसुन्दरकान्त
और हम लोगों ने तन गोपियों की कृष्ण की आराधना सर्वोत्तम। जैसे वे करती थी जिस रूप में कृष्ण की आराधना उन्होंने किया है, कहीं भी इसका कोई दूसरा उदाहरण नहीं, अपना उदाहरण अपने आप। यदि किसी को प्रेमा भक्ति की आवश्यकता हो तो गोपियों के कृष्ण के प्रति जो भाव है उनको अनुसरण करने की चेष्टा करें। वही इसमें बदलाव था जिसकी हमने कल बात कर ली थी। कृष्ण में तन्मय रहती थी, उनके आलाप में मग्न रहती थी। यहाँ पर तो केवल आलाप दिया है, आलाप अनुलाप विलाप संलाप अनुलाप इत्यादि बहुत प्रकार के 10 प्रकार के भेद इत्यादि अलग अलग सबके उदाहरण है। भगवद गीता में इस सबका वर्णन किया गया, एक एक श्लोक एक एक के लिए वर्णन किया, उसकी परिभाषा भी अलग अलग है। संलाप किसको कहते हैं, विलाप किसको कहते हैं, अनुलाप किसको कहते हैं, प्रलाप किसको कहते हैं इत्यादि। और विचेष्टा, विविध प्रकार की चेष्टाएं या विशेष चेष्टाएं दोनों। और तदात्मिका, तदात्मिका माने तत् आत्मिका, आत्मा भी उनमें जाती है। जैसे कृष्ण कर रहे हैं वैसे वो भी कर, उनकी चेष्टाएं कृष्णवत उनकी सब कुछ होती है। तद्गुण गायन गुण गुणान तद्गुणान गायन गुण का भी वर्णन करती हैं। कभी भी उनके दुर्गुणों को दोषों को कभी देखती नहीं है, सब समय उनके गुण। यदि कोई व्यक्ति अपने प्रिय व्यक्ति का दोष देखता है तो वो प्रिय बने, किंतु ये जगत में दोनों बातें हैं, ये होगा होगा नहीं, गुण देखेंगे दोष भी होगा। इसलिए वहां पर विशुद्ध प्रेम की बातें कर रहे हैं गायन को। न आत्मा आगाराणी संत, अपने घर को आगार को सब कुछ को वो भूल दे। साथ ही साथ ये भी समझ लो कृष्ण अपने भक्तों के पास रहते हैं, इसमें ये कृष्ण को इस प्रकार से स्मरण करके और सब भूल जाती हैं, तो कृष्ण वहां पर होते हैं उन्हें भी नहीं। कृष्ण भी अपने को घर को सबको वर्णन करना, उनका आलाप उनका तदात्म होना, ये सब वर्णन करना बहुत कठिन है। इसलिए अपने खुद वर्णन नहीं करते, भागवत का श्लोक न लेकर के लिया कहां, जो गोपियों के भावों की प्रशंसा करने वाली है वो मथुरा की कुमारियां या राजकुमारियां या वहां की रानियों इनका बात कर रहे, वो लोग इनकी प्रशंसा कर रहे हैं। कृष्ण गए हुए हैं मथुरा में अक्रूर जी इनको ले आए, ले आने के बाद में शाम को या शाम को आए हैं नगर प्रवेश किया, उनके सखा लोग मधुमंगल इत्यादि उनके साथ में, और यहाँ के लड़के सब उनसे मिले आए, अच्छी टोली उद्धम वाली टोली कृष्ण के पीछे पीछे चल रहे हैं। आए वृंदावन की तरफ से, इसलिए महाविद्या में एक पेड़ के नीचे नंद बाबा की गड़िया गाड़ी खड़ा की और वहीं पर अपना टेंट लगा दिया। टेंट माने क्या?
गाड़ी के,
गाड़ी के नीचे ही अपना दीवान बिछा दिया या कुछ और बिछा दिया और उसके ऊपर में विश्राम करने लगे। और उनके साथ में और भी लोग थे। और कृष्ण कहा जी बाबा मैं जरा नगर को देखा हूँ, बस नगर देखने के लिए। लोगों ने सुना कि कृष्ण और बलदेव मथुरा में आ गए हैं। उनको भी कुछ ऐसा भान था, ऐसी गंध लगी थी कि ये वसुदेव जी के लड़के दोनों हैं और ये चुपे चोरी वहाँ पर पले हैं गोकुल में, बड़े बलवान हैं और कंस इनको मारने के लिए षड्यंत्र कर रहा है। इसलिए कृष्ण को देखने की बड़ी लालसा, बड़े सुंदर हैं ये दोनों। सारी नगर की जितनी भी रमणियाँ थी वो अपने अटारियों पर चढ़कर और देखने के लिए आ रही, चारों तरफ में भगदड़ मच गई। कोई अंधा था, एक अंधे मित्र को कह रहा है जैसे कृष्ण आ रहे हैं चलो देखें, आंख नहीं है तो अभी देखने के लिए दोनों में चल पड़े। और दोनों चल पड़े अंधे भी गलियों में। ये अभी जो देख रहे हैं ना मथुरा की गलियां, ऐसे ही सकरी गली थी प्राचीन काल से 5000 वर्ष से पहले से, बहुत पुरानी बस्ती है ये, कम से कम 1,00,000,000,000 वर्ष की होगी मथुरापुरी जब शत्रुघ्न जी ने इसको बसाया। उस समय में कृष्ण चल रहे हैं और वृद्ध जवान लड़के बाल वृद्ध सब लोग स्त्री पुरुष सब लोग उनको देखने के दोनों तरफ में खड़े हो रहे हैं और लड़के उनके पीछे पीछे चल रहे हैं। बड़ा ही मनोरम दृश्य हुआ। स्त्रियां जो केश सवार रही थी मथुरा की जी, वो अपनी सास को या अपनी ननद को या दूसरे सहेली को कह रही हैं जल्दी से छोड़ो नहीं तो कृष्ण चले जाए। और कहती है बस हो गया है थोड़ा सा है, अगर यदि कृष्ण ही चले गए तो फिर ये समाज करके क्या होगा। इसलिए वो सब लोग व्यति व्यस्त हो करके कृष्ण के दर्शन के लिए, कोई उस समय में एक क्षण भी नहीं बीता था यदि कृष्ण चले गए। अभी कृष्ण बहुत दूर है किंतु पहले से कृष्ण उस दिन तो घूम करके चले गए और फिर उसी दिन में ही वो वस्त्र वाला रजक का वध किया। मांगने पर वस्त्र नहीं दिया तो उसका वध कर दिया, हाथ से ऐसे काट दिया और उसके बाद में उसका वस्त्र सब ले लिया और ले करके जैसे तैसे पहन लिए। और थोड़ी देर में दर्जी मिला सुदामा, उसका जी हमारे कपड़े सिल देगा बना देगा साथ साथ, बस देखता ही रह गया उनका। बोले जी क्यों नहीं बनाऊंगा, किसका बनाऊंगा, आप तुम्हारा नहीं बनाऊंगा, बस बना उनको माफ करके और साथ ही साथ में कपड़े काट करके 10-20 आदमी लगा दिए सब बच्चों के और उनको टोली सही सुंदर सुंदर सुघड़ पेश बनाया और उनको पहना। कृष्ण ने उनके तरफ में देखा और प्रेमा भक्ति उसको दे दी जो बड़े बड़े साधनों से नहीं होती। यदि कोई व्यक्ति भगवान से प्रीति रखना चाहता है तो यदि साक्षात नहीं होता मन ही फिर में ही कृष्ण को यदि अर्पण कोई कर दे, कुछ नहीं है तुलसी का एक पत्ता भी अर्पण कर दे, कुछ नहीं है, क्या है वो
तुलसी पत्रम पुष्पम फलम
तोयम जो मे भक्त्या तदहम भक्ति पतितम
अश्नामि
प्रजतात्मना, जो बड़े प्रयत्न से ललक करके हमारी सेवा के लिए यदि प्रतिपूर्वक एक पत्ता एक चुल्लू पानी पत्रम पुष्पम फलम
तुलसी दलमान तीन जलस,
ये सब चीजें यदि दे देता है। एक तुलसी का पत्ता का कितना मूल्य लौकिक दृष्टि से, पारमार्थिक दृष्टि से तो बहुत मूल्य, किंतु लौकिक दृष्टि से एक तुलसी का पत्ता भी भगवान को यदि प्रेम पूर्वक अर्पण कर दिया तो प्रजतात्मना, प्रजतात्मना माने जो प्रयत्न करके बड़े सावधानी के साथ में कृष्ण को अर्पण कर रहे हैं, बड़े प्रसन्न होकर के कृष्ण उसको कुछ भी नहीं है पानी दे दिया कृष्ण को, ऐसे लेकर के पानी कृष्ण के लिए अर्पण कर दे, कुछ भी नहीं है हृदय भी अर्पण कर दे, कोई भी तो बड़े प्रसन्न होकर के उसको ग्रहण कर दे। इस तरह से वो उसने अर्पण किया और उन्होंने ग्रहण कर लिए। केवल कपड़ा कृष्ण का सिलाई नहीं लिया, कृष्ण सिलाई भी देना चाहते हैं, तो जैसे केवट ने कुछ लिया नहीं ना पार कराई का, जैसे हमको एक चीज दे देंगे भाव सागर को जब पार करेंगे ना तो केवट से केवट पैसा नहीं लेता, तो हमको ये मैं आपको इस नदी से उतार रहा हूँ और हमको आप हम दोनों में मिताली हो गई पैसा टैसा हम भी नहीं लेंगे और आप भी मत लेंगे, आप नहीं लेंगे माने क्या बिना साधन भजन का ही हमको भौसाली से पार करते हैं ये बात। और भगवान ने ऐसा ही किया, जब राशिनाशन पर जब ऐसे सब लोगों को सब कुछ दे रहे हैं, उनकी आंख एक जगह खोज रही है कुछ, वो सखा हमारा कहाँ है केवट कहाँ है, किंतु वो किसी कारण से नहीं आ सका, नहीं आ सका, कृष्ण खोज रहे हैं ये सखा हमारा कहाँ है, और उसे मैंने प्रतिज्ञा की है, कोई वचन के द्वारा नहीं भावना के द्वारा, हृदय के हृदय से बातचीत हुई या आंख से बातचीत हुई, बोली से बातचीत नहीं, खोज रहे हैं खोज रहे हैं। अंत में जब नहीं आया तो दूसरे के द्वारा संदेश भिजवाया, ऐसे परम कृपालु श्री रामचंद्र जी कृष्ण की तो और क्या बात। तो इस तरह से मन में मन भी यदि कोई कुछ कर दे तो भगवान उसके ऋणी बन जाते हैं, इसलिए कहते हैं जब उस समय में कृष्णचंद्र जी उसके बाद में आगे बढ़े, मालाकार विराट उसने कृष्ण को गले में और सब बलदेव इत्यादि को सजा और आगे बढ़े तो सोने के थाल में कुब्जा जी चंदन लेकर सजा गए। उम्र अभी बहुत थोड़ी सी है, किशोरी है, किंतु सब अंगों से टेढ़ी है, विशेष करके यहाँ पर कुब्ज निकला हुआ है, गर्दन ऐसी है तो बड़ी सुंदर किंतु कुब्ज से वो गड़बड़ हो गई है। पर कृष्ण ने उसको देखा और उसको पहचान लिया और कुब्जा नहीं पहचान सकी, ये कौन है कुब्जा जी,
भूदेवी
पूर्व जन्म की है, ओ पहचान गए और झट उसको क्या किया, उसका काजे से चंदन हमें लगा देगी केसर और तिलक, बस बोली नहीं निकली, प्रेम उसके हृदय में उमड़ पड़ा, सोचा यदि कृष्ण को नहीं कंस को लगाते लगाते तो थक गए, बस कृष्ण को एक ऊंची स्थान पर बैठा दिया और सुंदर रूप से उनके तिलक की रचना कर दी, अलका लगाए तिलक सुंदर किया, गालों में मकड़ी ये सब लगाया और सुंदर सुंदर सब लगा करके अत्यंत राज पुरुष जैसा राजपुरुष तो थे ही और भी राज, और ललचाई दृश्य से कृष्ण की तरफ में देखा, कृष्ण ने ठीक है मैं पहले जिस काम के लिए हूँ काम कर लूँ फिर तुम्हारे यहाँ आऊँगा, बस वहाँ से आगे बढ़े और पहुँच गए इधर में रंगशाला, हाथी जाने नहीं दे रहा है और उसको, इसके बाद में शाम हो गई फिर लौट आए और चारों तरफ में तहलका मच गया, कर्ष ने सोचा कि हमारा मृत्यु आ गया। दूसरे दिन नंद बाबा, वसुदेव जी, अक्रूर जी और कंस के पिता उग्रसेन यथास्थान पर सबको कंस ने बैठाया, सबके सामने मार करके अपनी छाती ठंडी कर दी, अपने शत्रु को मारूंगा और ये लोग देखेंगे जो उनके बेटे असहाय रूप में मारे गए। उन्होंने समझा ये शायद ये भी उग्रसेन ही जैसा हो गया, शिकंजों में जैसे बंद कर दिया। वहां पर कृष्ण वहां से प्रवेश किया, रंगशाला में प्रवेश करते ही एकदम चारों तरफ उथल पुथल हो गए, हाथी को भिड़ा दिया और उस समय में अनायास ही उसे खिलवाड़ करते ही उसे गिरा दिया दोनों भाइयों ने और उसी का दांत उखाड़ करके उसे। इसके बाद में आगे बढ़े कैसे, उन्मत्त जैसे हाथी का छोटा सा शाव होता, सिंह शाव ऐसे ही हाथी के दांत जिस पर रक्त के छींटे पड़े हैं और गालों पर भी कहीं कहीं रक्त का छींटा है, इस प्रकार से लेकर के और चले। जब रंगशाला में उपस्थित हुए, नगाड़ा बजने लगा युद्ध जैसा और पहले से चारों मस्तिष्क कौशल इत्यादि सब प्रस्तुत थे और बजा रहे थे और ऐसे पहलवानी जैसा। उस समय में चारुण और मुष्टिक ने कृष्ण और बलदेव को पकड़ करके अखाड़े में खींच लिया। कृष्ण ने कहा अरे हम अभी दूध मुखे बच्चे, अभी छोटी उम्र के 8-10 वर्ष के और आप लोग लोहे के समान शरीर, वज्र के समान
पर्वत प्रमाण,
इतना पर्वत के समान हम लोग की आपकी आपका ये कुश्ती उचित नहीं बाबू, हमारे उम्र वाले जो हैं उनसे हम लड़ेंगे। उन्होंने कहा उम्र तुम्हार नहीं देखी जाती, खूब दूध और मक्खन खाया है तुम लोगों ने और दाव कुश्ती भी खेला है गोचारण के समय और जिसने अगासुर बकासुर और ये सब लोगों को मारा वो साधारण आदमी नहीं हो सकता है, इसलिए कोई भी न्याय अन्याय की बात नहीं है, सभी कुछ न्याय है, राजा के लिए सब कुछ किया जाता है। हम लोग राजा को प्रसन्न करने के लिए महाराज कंस को हम लोग अखाड़े में दंगल करेंगे। तब फिर कृष्ण और बलदेव से भी रहा नहीं गया, वो लोग भी अखाड़े में गए। उसी समय में वहां की जो राजकुमारियां या राजाओं की रमणियां थी, मथुरा थी,
पूर्वनिताएं
वो बड़ी शोकग्रस्त हो गई और कृष्ण के तरफ में देख करके अफसोस करने लगे। इस धर्मशाला में अन्याय हो रहा है, जो धर्मसभा में है इस सभा में सबको अन्याय होगा, अधर्म होगा, क्यों यहां पर अधर्म हो रहा है, ये जानबूझ करके इन लड़कों को मारने के लिए ऐसा षड्यंत्र किया जा रहा है, इसलिए इस सभा में जो है वो देख रहा है, सुन रहा है और इसका प्रतिरोध नहीं कर रहा है, उन सब लोगों को अधर्म लगेगा और उसके लिए पाप होगा। कहने के बाद उसी समय में वो गा रही हैं, पहले तो वो प्रसंग आया जो द्वादश रसों से विशिष्ट लोगों ने कृष्ण को अपने अपने रूप में देखा, मल्लानाम अशनी नीलांग नरवरह इत्यादि, पहलवानों ने देखा ये वज्र के समान, कंस ने देखा साक्षात जम हमारे लिए है, बड़े बड़े विद्वान पुरुषों ने ऋषियों ने क्या देखा विराट, जोगी नाम पर्दे नहीं और जातियों के लिए पर्दे होता और मनुष्यों के लिए परम सुंदर और गोपियों स्त्रियों के लिए साक्षात कामदेव और मैया के लिए
वहां पर देवकी है,
देवकी जी हैं, नंद बाबा हैं, वसुदेव हैं, उनके लिए
देवकी
उग्रसेन के लिए
वसुदेव पत्नियां हैं,
सखाओं के लिए मित्र, जो जैसा है उसी रूप में उदय, खिति भुजान शास्ता, पृथ्वी के जो नरेश हैं कौन, जो कलिकाल में जो असुर मर करके रामचंद्र जी की लीला में इस समय में क्षत्रिय हुए, वो कौन है, राक्षस है, वो जैसे कंस इत्यादि काल नेमी ये सब राक्षस, जरासंध इत्यादि सब वैसे ही हैं। कुछ ब्राह्मण हुए, कुछ क्षत्रिय हुए, तो वो करें जैसे ये सब लोग हैं वैसे, जैसे थे वैसे ही 10 प्रकार के लोगों ने 12 प्रकार से कृष्ण को देखा, 12 वर्षों में देखा, और तब ये कृष्ण को साक्षात कामदेव के समान देख करके फिर ये कह रहे हैं, ओहो हम लोगों जैसा यहाँ पर कोई भी हम जैसा दीन ही नहीं है, हम लोग दुर्भागा हैं, यदि कोई सौभाग्यवान है तो गोपियां हैं, उसी के लिए वो कह रहे हैं, गोपियों की महिमा यहाँ पर वर्णन कर रहे हैं एक श्लोक में। गोप्य तपत की आचरण जब दुस्वरूप लावण्य सामोधानंद सिद्धम दृग्भिमंतम दुराप एकांत धाम जसस श्रिय ऐश्वर्य। ये श्लोक है साधकों के लिए कीर्तन का विषय है, श्रवण का विषय है, ध्यान का विषय है, सब प्रकार से सेवनीय है। ध्यान किसका करेंगे, इन सब लीलाओं का ध्यान करेंगे कृष्ण के लिए। कीर्तन क्या करेंगे, इन्हीं लीलाओं का कीर्तन, कृष्ण कैसे हैं, और कीर्तन चीज किसका करेंगे, इन्हीं लीलाओं का। इसलिए श्रवण कीर्तन स्मरण वंदन पाद सेवन जो कुछ नवदा भक्ति है सब इन लीलाओं के लिए है। वो तो परम सौभाग्यवान है जो भगवान के इस लीला का श्रवण कीर्तन स्मरण वंदन पाद सेवन सब किया करते, यथार्थ में यही ध्यान का विषय, कीर्तन का विषय, सबका विषय। ठाकुर जी का अर्चन करते हुए भी अर्चन कर रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं, उसमें क्या बिना भावना का ऐसे ही देखेंगे निरस हृदय से ठाकुर जी को, न क्या देखेंगे, जसोमती नंदन का कीर्तन हो रहा है अथवा कीर्तन हो रहा है कदम्ब कानन रास परायण वृंदा विधि निवासी, क्या उस समय चिंतन होगा। ये सब आरती के समय में स्मरण करने के लिए ये सब गान के रूप में दिए जाते हैं। यदि उस समय इन सब लीलाओं का स्मरण करते हुए ठाकुर जी का दर्शन किया जाए तब तो फिर वो एक साधन होगा, नहीं तो वो कुछ साधन नहीं। इसके द्वारा मन उसमें लग जाता है, और निराकार में यदि ध्यान लगाए तो 1 सेकंड भी नहीं टिकेगा, और वहां से एकदम रसातल की तरफ ले जाएगा। तो गोप्यस तप की माचरण जब अनुस्मरण, कृष्ण का रूप देख करके बड़ी मुक्त हो गई, और करें अहो सखियों गोपियों ने क्या तपस्या की थी जो इस प्रकार लावण्य सार सौंदर्य का सार असमोध रूप, असमोध माने असमोध, जिनके बराबर नहीं है, जिसे अधिक की कोई कल्पना नहीं जा सकती, असम और सर्वविलक्षण, सर्वविलक्षण माने जगत में विश्व में ब्रह्मांड में गोलोक में वैकुंठ में कहीं भी ऐसी तुलना का स्थल नहीं है, जो रूप प्रतिक्षण नव नुमायमान रूप में दृष्टिगोचर होता है, और जो रूप जस श्री और ऐश्वर्य का एकमात्र आधार है, जितने जगत में जस है श्री है शोभा है सौंदर्य है और ऐश्वर्य है सबका ये आधार है, ऐसे श्री कृष्ण के रूप को नव नुमायमान रूप में निरंतर आंखों के द्वारा नेत्रों के द्वारा गोपियां वो निरंतर पान कर, हम लोग अभी देख रही हैं किंतु नौ नौ आयमान में रूप में नहीं,
कृष्ण का रूप जो है वो कहाँ प्रतिक्षण वर्धमान होता है, और अनुरागी के निकट जिसको अनुराग नहीं है कंस को क्रोध हो जाएगा कृष्ण का रूप देकर, रावण को राम का रूप देख करके क्रोध हो जाएगा, उनको आनंद नहीं होगा। इसकी व्याख्या में बतला रहे हैं। यहां पर बड़े क्षोभ के साथ ये जादों की पत्नियां ये कह रही, ओहो गोपियों ने क्या तपस्या की थी, किसी तपस्या के द्वारा कृष्ण नहीं मिलते, कृष्ण तो नहीं पाया जाता कोई तपस्या के द्वारा, किंतु बिना तपस्या के भी तो कृष्ण नहीं मिलते, तो इन्होंने कौन सी आश्चर्यजनक तपस्या की थी, साधन भजन किया था जो वो निरंतर कृष्ण का